एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के जज्बे और उम्मीद की एक गजब की मिसाल है। द सन डज शाइन, हाउ आई फाउंड लाइफ एंड फ्रीडम ऑन डेथ रो, ये एंथनी रे हिंटन की अपनी कहानी है।
जी हाँ, एंथनी रे हिंटन एक अमेरिकी व्यक्ति जिन्हें दो हत्याओं के लिए गलत तरीके से दोषी ठहरा दिया गया, और सोची उनके पास पक्की एलिबी थी, मतलब सबूत था कि उस वक्त कहीं और थे।
हाँ, काम पर थे शायद।
बिल्कुल काम पर थे, फिर भी उन्हें मौत की सजा मिली और उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल अलबामा की डेथ रो, यानी जहां मौत की सजा वाले कैदी रखे जाते हैं, वहां एक छोटी सी कोठरी में गुजारे।
30 साल? ओह, एक पूरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा, और वो भी अन्याय सहते हुए। ये कहानी सिर्फ कोर्ट कचेरी की नहीं है, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा है।
बहुत ज्यादा। ये दिखाती है कि कैसे, मतलब कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान अपनी आत्मा को, अपनी इंसानियत को जिंदा रख सकता है। ये उम्मीद की कहानी है, कल्पना की और माफी की ताकत की कहानी है।
और आज के समय में ये बहुत जरूरी भी लगती है, जब हम न्याय पे, भेदभाव पर, मानवाधिकारों पर इतनी बातें करते हैं, तब ये कहानी सुनना और समझना और भी अहम हो जाता है।
बिल्कुल, ये कहानी हमारी न्याय व्यवस्था की उन खामियों को, उन दरारों को दिखाती है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, खासकर जब मामला जुड़ा हो नस्ल से, गरीबी से।
हाँ,
ये सवाल उठाती है कि जब सिस्टम ही अन्याय करने लगे तो क्या होता है, और फिर वो बड़ा सवाल कि इतने मुश्किल, इतने अंधेरे हालातों में भी कोई अपनी इंसानियत कैसे बचाए रखता है।
सही बात है, ये सिर्फ हिंटन की कहानी नहीं रह जाती फिर।
नहीं, ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर के संघर्षों से भी जुड़ जाती है।
तो चलिए हिंटन के इस मुश्किल लेकिन असाधारण सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं, जैसा उन्होंने अपनी किताब में बताया है। शुरुआत कहाँ से करें, उनके बचपन से?
हाँ, वहीं से शुरू करते हैं जहां उनके किरदार की नींव पड़ी। उनका जन्म हुआ 1956 में अलाबामा में। प्राको नाम की एक छोटी सी गांव जैसी जगह थी।
और माहौल कैसा था वहां का?
नस्लीय भेदभाव बहुत गहरा था, गरीबी भी थी, लेकिन हिंटन बताते हैं कि घर में प्यार बहुत था, अपनापन था, और उनकी माँ बुलर हिंटन, वो उनकी जिंदगी का जैसे केंद्र थी।
हाँ, किताब में उनकी माँ का जिक्र बहुत मजबूती से आता है।
गहरी आस्था वाली महिला जिनके नैतिक सिद्धांत बहुत पक्के थे।
जी हाँ, और उन्होंने ही हिंटन को बचपन से सिखाया था सबका आदर करना, हर किसी में अच्छाई देखना और नफरत से बचना। और ये सीख आगे चलकर डेथ रो की उस भयानक जगह में उनके लिए एक तरह से जिंदगी बचाने वाली साबित हुई।
सही कहा, लेकिन बचपन में नस्लवाद का साया तो रहता ही होगा जैसा आपने बताया। बिल्कुल, वो दक्षिण अमेरिका का माहौल था, एक अश्वेत होने के अपने लिखे अनलिखे नियम थे, खतरे थे। तो बेसबॉल खेलना, मछली पकड़ना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब था, पर वो एहसास हमेशा रहता था कि कुछ गलतियां करने की छूट उन्हें नहीं है।
और फिर आया वो साल 1985, उनकी उम्र थी 29 साल, कोयला खदान में काम कर रहे थे, जिंदगी पटरी पर थी, और तभी सब कुछ बदल गया।
हाँ बिल्कुल, अचानक जैसे उनकी दुनिया ही पलट गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दो अलग अलग फास्ट फूड रेस्टोरेंट में डकैती और हत्या के आरोप में।
लेकिन आपने कहा उनके पास अलिबी थी।
हाँ, विडंबना यही है, जिस वक्त वो अपराध हुए, हिंटन मीलों दूर एक सुरक्षित गोदाम में अपनी शिफ्ट पर काम कर रहे थे, बाकायदा क्लॉक इन किया हुआ था, उनके सुपरवाइजर गवाही देने को तैयार थे।
तो फिर मामला बना कैसे, किस आधार पर उन्हें दोषी ठहराया?
मामला बहुत ही कमजोर था, और यहीं पर सिस्टम की गड़बड़ियां दिखती हैं। मुख्य सबूत बनाया गया उनकी माँ के घर से मिली एक पुरानी जंग लगी रिवॉल्वर को, .38 रिवॉल्वर।
अच्छा, और क्या कहा गया?
अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अपराध में जो गोलियां इस्तेमाल हुई वो इसी बंदूक से चली थी, जबकि हिंटन का कहना था कि वो बंदूक तो बरसों से चली ही नहीं थी, और जो फोरेंसिक जांच हुई थी गोलियों की वो भी बाद में गलत साबित हुई।
और वकील, उन्हें कोई ठीक वकील नहीं मिला अपना पक्ष रखने के लिए।
यहीं पर यह कहानी और दुखद हो जाती है। कोर्ट ने जो वकील दिया वो न सिर्फ ऐसे गंभीर मामलों के लिए अनुभवहीन था, बल्कि उसने हिंटन के बचाव में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं दिखाई।
मतलब?
उसने राज्य से एक अच्छे बैलिस्टिक एक्सपर्ट यानी गोली बंदूक के जानकार के लिए ज्यादा पैसे मांगे ही नहीं, ये सोचकर कि मिलेंगे ही नहीं, जबकि बाद में पता चला कि मिल सकते थे।
ओहो।
दूसरी तरफ जो सरकारी वकील थे बॉड मैकग्रेगर, उन पर पहले से ही नस्लीय भेदभाव के आरोप लगते रहे थे, और जूरी उसमें सारे के सारे सदस्य श्वेत थे।
तो मतलब एक के बाद एक चीज उनके खिलाफ जा रही थी, नस्ल, गरीबी, वकील की लापरवाही, शायद दोषपूर्ण जांच भी,
दुर्भाग्य से। हाँ,
सब कुछ जैसे उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। नतीजा, उन्हें दोषी मान लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। 1986 में वो अलाबामा के होलमैन जेल की डेथ रो पर पहुंच गए, एक 5x7 फीट की कोठरी अगले 30 सालों के लिए।
30 साल डेथ रो पर, जहां हर पल मौत सर पे मंडराती है, वहां जिंदगी कैसी होती होगी सोचना भी मुश्किल है। शुरू के दिन कैसे थे उनके?
बहुत भयानक। शुरू के 3 साल तो उन्होंने पूरी तरह खामोशी में और गहरे गुस्से में बिताए, किसी से कोई बात नहीं, बस अपनी कोठरी में बंद। डेथ रो का माहौल ऐसा होता है, फांसी घर या इलेक्ट्रिक चेयर पास ही होती है, दूसरे कैदियों की चीखें सुनाई देती हैं, मौत का खौफ, अकेलापन। उन्होंने लिखा भी है कि कैसे वो हर रात सोचते थे कि क्या कल सुबह का सूरज देख पाएंगे। गुस्सा और निराशा बिल्कुल चरम पर थे।
लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहे, कुछ बदला है ना, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी।
हाँ, और वो एक बहुत ही मार्मिक पल था। लगभग 3 साल गुजर गए थे, एक रात उन्होंने अपनी बगल वाली कोठरी से एक साथी कैदी के रोने की, सिसकने की आवाज सुनी। उस आवाज ने जैसे उन्हें अंदर तक हिला दिया।
अच्छा।
उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनका दर्द, उनका दुख सिर्फ उनका नहीं है, उस कतार में, उस डेथ रो पर हर कोई किसी न किसी तरह से टूट रहा था। और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि वो इस निराशा को, इस गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी इंसानियत को फिर से जगाने का फैसला किया, दूसरों से जुड़ने का फैसला किया।
ये तो अपने आप में एक तरह का विद्रोह था उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें वहां डाला था। उन्होंने अपनी उस छोटी सी कोठरी को कैसे बदला फिर?
अपनी कल्पना से। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर उन्होंने अपनी उस 5x7 की कोठरी को अपनी कल्पना का मैदान बना लिया।
कल्पना का मैदान कैसे?
वो आंखें बंद करते थे और दुनिया घूमने निकल जाते थे। कभी वो मनी मन इंग्लैंड की महारानी के साथ चाय पी रहे होते, कभी किसी फिल्म स्टार से शादी कर रहे होते। उन्होंने कहा भी कि लोग शायद इसे पागलपन समझे।
हाँ।
लेकिन ये उनके लिए अपनी मानसिक आजादी बनाए रखने का तरीका था, उस अमानवीय माहौल के खिलाफ एक तरह का दिमागी प्रतिरोध था।
कल्पना को हथियार बनाना, ये तो अद्भुत बात है। और उन्होंने सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बदली, दूसरों पर भी असर डाला।
बिल्कुल। उन्होंने डेथ रो पर एक बुक क्लब शुरू कर दिया। आप सोच सकती हैं,
डेथ रो पर बुक क्लब?
हाँ, मौत की सजा पाए कैदी जेम्स बाल्डविन जैसे लेखक की किताबों पर अपनी अपनी कोठरियों से चिल्ला चिल्ला कर बहस कर रहे हैं। वो कई कैदियों के लिए एक तरह से सलाहकार बन गए, दोस्त बन गए, झगड़े सुलझाने वाले बन गए।
कमाल है।
और सिर्फ पश्वेत कैदियों के लिए नहीं, उन्होंने श्वेत कैदियों से भी रिश्ते बनाए। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो कू क्लक्स क्लैन यानी के के सदस्य थे, जो एक नस्लवादी, नफरत फैलाने वाला समूह है। उन्होंने नफरत की जगह प्यार चुना, निराशा की जगह खुशी।
ये सब अविश्वसनीय लगता है, पर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था? उनकी कानूनी लड़ाई का क्या हुआ? कोई उनकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था?
सालों तक अपीलें खारिज होती रहीं, कई वकील आए और गए। फिर 90 के दशक के आखिर में एक उम्मीद जगी, जब ब्रायन स्टीवेंसन और उनके संगठन इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव यानी EJI ने उनका केस अपने हाथ में लिया।
ब्रायन स्टीवेंसन, जस्ट मर्सी वाले?
हाँ, उनका आना जरूर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा।
बिल्कुल। स्टीवेंसन और उनकी टीम ने नए सिरे से पूरी जांच की। उन्होंने देश के 3 सबसे बड़े स्वतंत्र बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को केस में शामिल किया।
और उन्होंने क्या पाया? तीनों ने अलग अलग जांच की और तीनों इसी नतीजे पर पहुंचे कि जो गोलियां अपराध की जगह से मिली थी वो हिंटन की मां की बंदूक से नहीं चली थी। राज्य के एक्सपर्ट की जो पुरानी रिपोर्ट थी वो गलत थी, उसमें वैज्ञानिक खामियां थी।
तो मतलब अब तो पक्का सबूत था कि वो बेगुनाह है, फिर तो रिहाई हो जानी चाहिए थी।
यहीं पर सिस्टम का वो अड़ियलपन सामने आता है। इतना साफ सबूत होने के बाद भी अलाबामा राज्य अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने अगले 16 साल तक हिंटन की रिहाई को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी।
16 साल सबूत मिलने के बाद भी?
हाँ, मामला आखिरकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट तक?
जी।
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
जी, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से, मतलब सभी जजों ने एक मत होकर फैसला दिया कि हिंटन को निष्पक्ष सुनवाई का जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिला था।
अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा?
तो कोर्ट ने माना कि उनके जो शुरुआती वकील थे उनका ये ना जानना कि उन्हें बेहतर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए राज्य से ज्यादा फंड मिल सकता था, ये कानूनी मदद के न्यूनतम स्तर से भी नीचे था। ये वकील की साफ साफ नाकाबिलियत थी जिसने हिंटन के बचाव को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया।
तो अंत में न्याय मिला, लेकिन कितनी देर से, कितनी भारी कीमत चुकाकर।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य ने थोड़ी आनाकानी कील, पर आखिर में उन्हें झुकना पड़ा और 3 अप्रैल 2015 को डेथ रो पर 29 साल 8 महीने और 12 दिन बिताने के बाद एंथनी रे हिंटन एक आजाद इंसान की तरह जेल से बाहर आए, सारे आरोप खारिज।
आजादी, लेकिन 30 साल बाद बाहर आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे देखा? क्या मन में कड़वाहट थी, गुस्सा था?
और यहीं पर हिंटन की कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे प्रेरणा देने वाला पहलू सामने आता है। बाहर आकर उनकी जिंदगी बदले या कड़वाहट से नहीं भरी थी, बल्कि एक मिशन के साथ शुरू हुई।
मिशन? कैसा मिशन?
उठाना और दुनिया को उम्मीद, माफी और इंसान की गरिमा की ताकत के बारे में सिखाना।
डेथ रो के 29 सालों ने उनके जीने के तरीके को, उनके फलसफे को कैसे बदला होगा? क्या चीज थी जिसने उन्हें उस अंधेरे में भी रोशनी दिखाई?
उनका जो दर्शन है वो प्रेम, क्षमा और खुशी को एक तरह से प्रतिरोध के हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर आधारित है। इसकी जड़ें उनकी माँ की दी हुई आस्था में हैं और एक गहरे मानवतावाद में। वो मानते थे कि हर इंसान में, चाहे उसने कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, इंसानियत की एक चिंगारी होती है, उसे देखना और उसका सम्मान करना जरूरी है।
इसीलिए शायद वो डेथ रो पर उन लोगों से भी जुड़ पाए जिनसे कोई बात नहीं करना चाहेगा।
बिल्कुल, जैसे हेनरी हेज का आपने जिक्र किया था, जो केकेके नेता का बेटा था और एक अश्वेत किशोर की हत्या के लिए मौत की सजा पे था। हिंटन इसकी फांसी पर भी दुखी हुए थे, ये उनकी मानवता थी।
उन्होंने कड़वाहट को क्यों नहीं आने दिया? उनका वो वाक्य बहुत असरदार है, उन्होंने मेरे 30 साल ले लिए, वो मेरी आत्मा नहीं ले सकते थे, वो मेरी खुशी नहीं ले सकते थे। कहना कितना आसान लगता है पर करना।
उन्होंने ये बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि नफरत पालना, गुस्सा रखना, ये जहर खुद पीने जैसा है। असली आजादी बाहर की दुनिया में नहीं, मन के अंदर होती है। इसीलिए उन्होंने उन सबको माफ कर दिया जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था।
सबको? उस वकील को, जज को, जूरी को?
हाँ, और ये माफी उन्होंने दूसरों के लिए नहीं की, ये उन्होंने खुद के लिए की, ताकि वो नफरत और गुस्से के बोझ से आजाद हो सकें। जैसा उन्होंने कहा, मुझे माफ करना पड़ा, यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं आजाद हो सकता था। ये खुद को मुक्त करने का एक सक्रिय कदम था।
उनके जीवन में कई अहम मोड़ आए होंगे, लेकिन अगर 3 सबसे निर्णायक, सबसे ज्यादा असर डालने वाले मोड़ों की बात करें तो वो कौन से होंगे?
पहला तो जाहिर है उनकी गिरफ्तारी और दोष सिद्धि 1985 से 1986 ही थी। वो एक भूकंप जैसा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, उन्हें अन्याय की उस गहरी खाई में फेंक दिया।
हाँ, वो तो है ही।
ये सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं थी, ये उनकी पहचान पर, उनके अश्वेत होने पर, उनकी गरीबी पर एक क्रूर हमला था। नस्लवाद का जो डर पहले सिर्फ एहसास था, वो अब उनकी ठोस डरावनी हकीकत बन गई थी। इसने उनकी कहानी ही बदल दी।
बिल्कुल, इसने उन्हें एक आम इंसान से सिस्टम का शिकार बना दिया। और दूसरा बड़ा मोड़?
दूसरा मोड़ अंदरूनी था, पर उतना ही अहम। वो था मानवता के साथ फिर से जुड़ने का उनका फैसला, लगभग 1989। डेथ रो पर वो जो शुरुआती 3 साल के गुस्से और खामोशी में डूबे थे, उसके बाद जब उन्होंने उस रात साथी कैदी की सिसकी सुनी और उससे बात करने का फैसला किया, वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
हाँ, वो सिसकी वाली बात।
उसने उन्हें एहसास दिलाया कि गुस्सा और अकेलापन उन्हें ही खत्म कर रहा है, और ये उसी सिस्टम की जीत है जिसने उन्हें कैद किया है।
तरह से निष्क्रिय शिकार बने रहने से सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला था।
हाँ बिल्कुल, अपनी उस छोटी सी दुनिया के अंदर ही सही। इस एक फैसले ने उन्हें अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को बदलने की ताकत दी। यहीं से उन्होंने वो समुदाय बनाना शुरू किया, बुक क्लब चलाया, दूसरों के दुख में शामिल हुए। उन्होंने अपनी गरिमा वापस पाई, बाहरी दुनिया के न्याय का इंतजार किए बिना।
और तीसरा निर्णायक मोड़ जिसने आखिरकार उनकी बाहरी दुनिया बदली,
वो था ब्रायन स्टीवेंसन और EJI से उनकी मुलाकात, लगभग 1999। सालों की नाकाम कोशिशों के बाद स्टीवेंसन का आना और ये कहना कि मुझे आप पर विश्वास है, ये उम्मीद की पहली असली ठोस किरण थी। ये सिर्फ कानूनी मदद नहीं थी, ये एक तरह की मानवीय पुष्टि थी।
इसने जरूर उन्हें लड़ते रहने की हिम्मत दी होगी इतने सालों तक।
निश्चित रूप से, इसने न सिर्फ न्याय की उनकी लगभग खत्म हो चुकी उम्मीद को फिर से जगाया,
बल्कि अगले 16 साल की वो लंबी थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ने का हौसला भी दिया। ये इस बात का भी सबूत था कि हाँ, कोई है जो उनकी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। इसने उनके संघर्ष को एक मजबूती दी।
हिंटन की ये कहानी, ये जिंदगी हमें सिखाती क्या है? आज हम अपनी जिंदगियों में जो अलग अलग मुश्किलें झेलते हैं, उनके अनुभव से क्या सीख सकते हैं?
शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि असली आज़ादी, असली खुशी बाहर के हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे मन और आत्मा की स्थिति पर करती है। हिंटन ने जेल की दीवारों के अंदर अपनी कल्पना से अपनी भावनाओं को काबू करके एक तरह की अंदरूनी आज़ादी पाली थी अपनी रिहाई से बहुत पहले। ये सिखाता है कि हम अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों।
और माफ़ी की ताकत, वो भी एक बहुत बड़ा सबक है।
हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि उनकी माफ़ी का मतलब अन्याय को भूलना नहीं था या उसे सही ठहराना नहीं था।
बिल्कुल,
ये खुद को नफ़रत और कड़वाहट के बोझ से आज़ाद करने का एक फ़ैसला था, अपनी अंदरूनी शांति को बचाने का एक तरीका था।
और ये भी कि इंसानियत वो सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरी जगहों पर भी मिल सकती है।
बिल्कुल, हिंटन ने न सिर्फ अपनी इंसानियत बचाई बल्कि दूसरों में भी, चाहे वो कितने भी बुरे अपराधी क्यों ना हो, उनमें भी इंसानियत को ढूंढा और उसे जगाने की कोशिश की। ये मानवीय रिश्तों की ताकत दिखाता है।
और उम्मीद, शायद ये कि उम्मीद कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, उसे चुनना पड़ता है, उसे बनाए रखना पड़ता है रोज, खासकर तब जब बाहर से कोई वजह न दिख रही हो।
सही कहा, ये एक सक्रिय अनुशासन है, आज के समय के लिए बहुत जरूरी सबक है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हम 3 मुख्य बातें श्रोताओं के लिए निकालें तो वो क्या होंगी? पहली, एक भावनात्मक बात। सबसे गहरा भावनात्मक सबक ये है कि नफरत और मरहम साथ साथ नहीं चल सकते। जैसा हिंटन कहते हैं, आप एक ही समय में नफरत और उपचार नहीं कर सकते। मैं उपचार चुनता हूँ। तो माफ करना, ये दूसरों के लिए नहीं, खुद को आज़ाद करने के लिए है, कड़वाहट के जहर से खुद को बचाने के लिए है। दूसरी, एक सोचने वाली बात, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। ये कहानी हमारे न्याय सिस्टम की गंभीर कमियों को दिखाती है। कैसे गरीबी, नस्ल, खराब कानूनी मदद, गलत विज्ञान, ये सब मिलकर किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा सिस्टम कितना भरोसेमंद है और उसमें सुधार की कितनी जरूरत है। कभी कभी एक आसान लगने वाला झूठ मुश्किल सच पर भारी पड़ जाता है।
सही है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक, सबके लिए जरूरी बात। असली आज़ादी हालात से नहीं बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया से तय होती है। सबसे मुश्किल वक्त में भी इज्जत, मकसद और उम्मीद बनाए रखने की इंसान की ताकत कमाल की है, अगर उसे इरादे, अपनेपन और उम्मीद से सींचा जाए। जैसा किताब का नाम है, सूरज चमकता है यहाँ तक कि सबसे अंधेरी जगहों में भी।
और शायद एक आखिरी सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हिंटन की कहानी हमें अपनी न्याय व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने को तो कहती है, पर ये इंसान के जज्बे, उसकी गरिमा और माफी की ताकत का भी एक असाधारण सबूत है। तो सवाल ये है कि समाज के तौर पर हम उस अंधेरे से कैसे निपटें जो ऐसी दुखद कहानियों को जन्म देता है, और एक व्यक्ति के तौर पर जब बाहर की दुनिया निराश करे तो हम अपने अंदर की रोशनी को कैसे जलाए रखें।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।